एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। ज्ञान गोष्ठी के आज के अंक में सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतर रहे हैं जो हमें अपने ही आसपास की दुनिया को एक बिल्कुल नए गहरे नजरिए से देखना सिखा सकती है।
बिल्कुल, ये एक ऐसी यात्रा है जो परिचित रास्तों पर ही, आप कह सकते हैं, अनजान खजानों की खोज करती है। हम बात कर रहे हैं एनी डिलार्ड की बेहद प्रशंसित और पुलित्जर पुरस्कार विजेता किताब पिलग्रिम एट टिंकर क्रीक की।
और ये आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, शायद पहले से भी ज्यादा। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ना, जहाँ ध्यान बटाने वाली हजार चीजें हैं, हम अक्सर अपने आसपास मौजूद छोटी छोटी चीजों के आश्चर्य को महसूस करना भूल जाते हैं। तो ये किताब हमें रुकने, ध्यान देने और सचमुच देखने के लिए प्रेरित करती है।
हाँ, और ये सिर्फ प्रकृति के शान सुंदर रूप की बात नहीं करती, ये नहीं है, ये हमें उसकी जटिलता, उसकी निर्ममता और उसकी विरोधाभासों का सामना करने की हिम्मत भी देती है। ये एक तरह से ध्यान और दर्शन का अद्भुत मिश्रण है जो वर्जीनिया की एक छोटी सी नदी टिंकर क्रीक के किनारे बुना गया है।
तो चलिए इस अनोखी लेखिका और उनकी इस असाधारण कृति की गहराइयों में उतरते हैं। एनी डिलार्ड, जिनका जन्म 1945 में हुआ, वो एक अमेरिकी लेखिका हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ प्रकृति लेखक कहना शायद उनके काम के साथ पूरा न्याय नहीं होगा।
सही बात है, बिल्कुल सही। उनकी खासियत उनके अनूठे नजरिए में है। वो एक वैज्ञानिक की बारीकी से निरीक्षण करती हैं, एक कवि की भाषा में लिखती हैं और एक दार्शनिक की तरह गहरे सवाल उठाती हैं। अस्तित्व, चेतना, ईश्वर की प्रकृति जैसे सवाल।
और कमाल की बात यह है कि पिलग्रिम एट टिंकर क्रीक के लिए उन्हें 1975 में सिर्फ 29 साल की उम्र में पुलित्जर पुरस्कार मिला था, वो भी सामान्य गैर काल्पनिक श्रेणी में।
हाँ, ये वाकई ये बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने वर्जीनिया के हॉलिंस कॉलेज से पढ़ाई की और वहीं टिंकर क्रीक के पास रहती थी, जो इस किताब की पृष्ठभूमि भी है और प्रेरणा भी।
उनका दृष्टिकोण इसलिए भी खास है क्योंकि वो किसी एक खांचे में फिट नहीं होती, है ना?
बिल्कुल, वो प्रकृति को सिर्फ तथ्यों के संग्रह की तरह नहीं देखती, नहीं सिर्फ भावनाओं के आईने की तरह। वो इन दोनों को मिलाती हैं। वो घंटों तक धैर्य से किसी कीड़े, किसी पेड़ या पानी की हलचल को देखती हैं और फिर
हाँ,
फिर उस अवलोकन से उठे सवालों को हमारे सामने रखती हैं। सवाल जो अक्सर हमें असहज करते हैं पर सोचने पर मजबूर जरूर कर देते हैं।
और उनमें एक असाधारण ईमानदारी है। वो प्रकृति की सुंदरता के साथ साथ उसकी हिंसा, उसके सृजन के साथ साथ उसके विनाश को भी, मतलब बिना किसी पर्दे के, देखती हैं और लिखती हैं। ये हिम्मत की बात है वाकई।
तो ये किताब पिलग्रिम एट टिंकर क्रीक आखिर है क्या? देखिए, इसे किसी एक श्रेणी में रखना मुश्किल है।
हाँ, ये तो है।
ये संस्मरण है, प्रकृति लेखन है, धर्मशास्त्रीय चिंतन है और दार्शनिक जांच भी। डिलार्ड वर्जीनिया की ब्लू रिज पहाड़ियों में टिंकर क्रीक के पास बिताए अपने एक साल का लेखा जोखा प्रस्तुत करती हैं।
लेकिन ये सिर्फ एक डायरी नहीं है, है ना? हर अवलोकन, चाहे वो एक पानी के कीड़े का हो या सर्दियों में जमी हुई झील का, वो एक बड़े सवाल की ओर ले जाता है। किताब का केंद्रीय विचार शायद ये है कि देखना एक कला है।
बिल्कुल, सिर्फ नजर डालना नहीं बल्कि पूरी सजगता, आश्चर्य और गहरे ध्यान से देखना।
और डिलार्ड मानती हैं कि अगर हम इस कला को साध लें तो हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक सत्य वो हमारे आसपास की दुनिया में ही छिपे हैं।
सही कहा, प्रकृति एक खुली किताब भी है और एक आईना भी, जिसमें अस्तित्व के गूढ़ रहस्य और विरोधाभास झलकते हैं। वो हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में ही एक यात्री या पिलग्रिम बनने की चुनौती देती हैं।
तो चलिए, किताब की मोटी मोटी परतों को हटाकर उसके कुछ मुख्य विषयों और उदाहरणों को देखते हैं। बजाय इसके कि हम अध्याय दर अध्याय चलें, हम कुछ बड़े विचारों को पकड़ते हैं जो पूरी किताब में बार बार उभरते हैं।
हाँ, ये बेहतर रहेगा।
सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी विचार है देखने की कला।
हाँ, ये किताब के शुरुआती अध्यायों में ही साफ हो जाता है, खासकर सीइंग नाम के अध्याय में। डिलार्ड कहती हैं कि हम अक्सर देखते हुए भी नहीं देखते। वो उन लोगों का उदाहरण देती हैं जो जन्म से अंधे थे और सर्जरी के बाद पहली बार देख पाए।
अच्छा।
हाँ, तो उनके लिए दुनिया रंगों और आकारों का एक शोरगुल भरा अर्थहीन मिश्रण थी। उन्हें देखना सीखना पड़ा
बकायदा। ओह, इससे पता चलता है कि हमारा देखना सिर्फ आंखों का काम नहीं है बल्कि हमारे दिमाग की व्याख्या, हमारा पिछला ज्ञान और
हाँ हाँ हमारी अपेक्षाएं भी
उनका नतीजा है। बिल्कुल, डिलार्ड उस शुद्ध देखने की बात करती हैं जो विश्लेषण से पहले आता है, और यहीं वो अपने उस अद्भुत अनुभव का जिक्र करती हैं जब उन्हें एक साधारण सा गूलर का पेड़ सिकमोर ट्री
हाँ.
अचानक रोशनी और आग से जगमगाता हुआ दिखा. द ट्री विद द लाइट्स इन इट.
वो कहती हैं कि ये कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि एक क्षण था जब उनकी चेतना वो पूरी तरह खुली हुई थी बिना किसी फिल्टर के. ये अनुभव उन्हें दिखाता है कि दुनिया आश्चर्य से भरी है अगर हम अपनी धारणाओं के पर्दे हटाकर देखना सीखें. ये देखना एक साधना है, अभ्यास मांगता है.
और ये देखना हमें कहाँ ले जाता है? ये हमें प्रकृति के दूसरे बड़े पहलू से रूबरू कराता है, उसका दोहरा चरित्र, मतलब सौंदर्य और क्रूरता का साथ साथ होना.
बिल्कुल नहीं,
डिलार्ड इससे कतराती नहीं है.
बिल्कुल नहीं.
किताब की शुरुआत में ही वो अपनी बिल्ली का जिक्र करती हैं जो सोते हुए उनके सीने पर अपने खूनी पंजे रख देती है.
हाँ, और फिर वो मशहूर और सच कहूं तो दिल दहला देने वाला वाक्या है जब वो एक बड़े पानी के कीड़े जायंट वाटर बग को एक मेंढक को पकड़ते हुए देखती हैं. वो कीड़ा मेंढक के अंदरूनी अंगों को घोलकर पी जाता है.
ओह, और पीछे रह जाती है सिर्फ खाली चमड़ी.
ये पढ़ना वाकई आसान नहीं है.
नहीं है, ये प्रकृति की निर्ममता का नग्न चित्रण है.
लेकिन डिलार्ड इसे सनसनीखेज बनाने के लिए नहीं लिखती. वो पूछती हैं कि इस दुनिया में ऐसी क्रूरता क्यों है.
वसंत, जिसे हम नए जीवन का प्रतीक मानते हैं, उसे भी डिलार्ड एक हिंसक अराजक शक्ति के रूप में देखती हैं.
हाँ, जहां हर जीव जीने और प्रजनन करने की एक अंधी दौड़ में लगा है.
और इसी से जुड़ा है फेकुंडिटी का विचार, यानी प्रकृति की असीम उत्पादन क्षमता.
बिल्कुल, डिलार्ड हमें बताती हैं कि कैसे अरबों कीड़े पैदा होते हैं और लगभग तुरंत ही खा लिए जाते हैं, कैसे अनगिनत बीज यूं ही बेकार हो जाते हैं.
ये बर्बादी है या उदारता?
हाँ, यही सवाल वो उठाती हैं. इस बहुतायत का क्या मतलब है? ये सवाल हमें प्रकृति की सुंदरता के रोमानी हयाल से बाहर निकालते हैं.
हाँ, उसकी असलियत दिखाते हैं.
बिल्कुल.
और फिर एक और परत खुलती है प्रकृति की अविश्वसनीय जटिलता और उसका रहस्य. अध्याय इंट्रिकसी में डिलार्ड किसी पक्षी के पंख की महीन बनावट या तितली के पंखों के डिजाइन पर हैरान होती हैं
और सवाल उठाती हैं, ये सब किसके लिए है? इतनी बारीकी, इतनी सुंदरता, जिसका ज्यादातर हिस्सा तो कोई देख भी नहीं पाता.
हाँ,
क्या इसका कोई उद्देश्य है या ये बस यूं ही है? यही वो देवस एब्सकॉन्डिटस यानी छिपे हुए ईश्वर के विचार को छूती हैं. एक ऐसा रचयिता जो रचता तो है पर फिर शायद किनारे हट जाता है, अपनी रचना के प्रति उदासीन सा लगता है.
ये सर्दियों के अध्याय से भी जुड़ता है जहां ऊपर से सब शांत और मृत लगता है.
हाँ, पर डिलार्ड बर्फ के नीचे छिपे जीवन और तैयारी को महसूस करती हैं. ऐसा लगता है कि बहुत कुछ हमेशा हमारी नजरों से ओझल रहता है.
और इन सब अवलोकनों, सुंदरता, क्रूरता, जटिलता, बर्बादी के बीच डिलार्ड पीड़ा और दुख के सवाल से जूझती हैं.
हाँ, अध्याय द हॉर्न्स ऑफ द ऑल्टर, वेदी के सींग में, वो कहती हैं कि बाइबल में वेदी के सींग शरण का प्रतीक थे, पर प्रकृति में कोई शरण नहीं है.
कोई शरण नहीं.
परजीवी, शिकारी, यहाँ जीवन लगातार कुर्बान हो रहा है. इसे एक दयालु ईश्वर के विचार के साथ कैसे मिलाया जाए?
डिलार्ड कोई आसान जवाब नहीं देती. ये खास बात है, किताब का अंत किसी निश्चित समाधान पर नहीं पहुंचता. लेकिन अंतिम अध्याय द वॉटर्स ऑफ सेपरेशन में एक तरह की स्वीकृति झलकती है.
शायद रचयिता का काम भव्यता से खर्च करना है और हमारा काम साक्षी बनना है.
हाँ, शायद इस सुंदरता और भय के प्रति सही प्रतिक्रिया विस्मय और सजगता ही है. यात्रा जवाबों पर नहीं, बल्कि देखने के एक बदले हुए नजरिए पर खत्म होती है.
तो इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें या संदेश उभरते हैं. सबसे पहला तो यही है, देखने की कला को साधना. ये सिर्फ आंखों का नहीं, पूरे मन और चेतना का काम है. इसके लिए अभ्यास और धैर्य चाहिए.
दूसरा, प्रकृति और जीवन के विरोधाभासों को स्वीकारना. सुंदरता और क्रूरता, सृजन और विनाश, ये अलग अलग नहीं है.
नहीं है,
बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं.
जीवन जटिल है, इसे सरल बनाने की कोशिश अक्सर सच्चाई से दूर ले जाती है.
तीसरा, चेतना का रहस्य. हम कैसे जानते हैं, हम अपने होने को कैसे महसूस करते हैं, ये शायद सबसे बड़ा सवाल है. डिलार्ड सोचती हैं कि शायद चेतना ही ब्रह्मांड का खुद को जानने का तरीका है.
ये विचार ही अपने आप में कितना विस्मयकारी है,
है ना?
चौथा, साधारण में असाधारण या पवित्र को खोजना. दिव्यता या गहरा अर्थ पाने के लिए किसी खास जगह या अनुभव की जरूरत नहीं, वो हमारे आसपास रोजमर्रा की चीजों में ही मौजूद है.
हाँ,
बस हमें उसे पहचानने वाली नजर चाहिए. जैसे मानसून की पहली बारिश के बाद मिट्टी की सौंधी गंध या किसी पुराने बरगद की जड़ों की जटिलता।
बिल्कुल। और पांचवा, वर्तमान क्षण में जीना, उसकी पूरी सच्चाई के साथ, चाहे वो सुखद हो या भयावह। वर्तमान सिर्फ शांत ध्यान नहीं है,
नहीं,
बल्कि जीवन की कच्ची हकीकत का सामना भी है।
डिलार्ड की भाषा भी कमाल की है, उसमें काव्यात्मकता और दार्शनिक गहराई है। कुछ पंक्तियां तो सीधे दिल में उतर जाती हैं।
हाँ, जैसे वो कहती हैं, मैं पूरी जिंदगी एक घंटी थी और ये तब तक नहीं जानती थी जब तक कि उस पल मुझे उठाया और बजाया नहीं गया।
क्या अद्भुत रूपक है,
है ना? ये बताता है कि हम सबके अंदर कितनी क्षमताएं छुपी हो सकती हैं, जो किसी खास अनुभव या क्षण में ही उजागर होती हैं।
बिल्कुल। और देखने की प्रक्रिया पर ये पंक्ति भी सोचने पर मजबूर करती है। देखना निश्चित रूप से बहुत हद तक शाब्दीकरण का मामला है। जब तक मैं अपनी आंखों के सामने से गुजरने वाली चीजों पर ध्यान नहीं देती और उन्हें नाम या विवरण नहीं देती, मैं बस उन्हें देखूंगी ही नहीं।
मतलब किसी चीज को सिर्फ देखना काफी नहीं।
हाँ, उसे समझना, उसे शब्दों में ढालने की कोशिश करना।
हाँ हाँ, ये अनुभव को गहरा बनाता है। बिल्कुल, ध्यान और अभिव्यक्ति मिलकर।
और ये पंक्ति हमारी भूमिका पर रोशनी डालती है। सौंदर्य और कृपा का प्रदर्शन होता है चाहे हम चाहें या उन्हें महसूस करें, यानी हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि वहां होने की कोशिश करें।
सही बात है, एक तरह से ये हमें साक्षी बनने का निमंत्रण है। दुनिया अपना नाटक रच रही है, कम से कम हम दर्शक बनकर ध्यान से देखें तो सही।
और अपनी जगह को स्वीकारते हुए ये ईमानदारी देखिए, मैं एक गिरी हुई दुनिया में एक घिसी पिटी और कुतरी हुई उत्तरजीवी हूँ। मैं बूढ़ी हो रही हूँ और खाई जा रही हूँ, और मैंने खाने में भी अपना हिस्सा लिया है।
इसमें कोई मेलोड्रामा नहीं है, बस एक नग्न स्वीकारोक्ति कि हम भी उसी जीवन चक्र का हिस्सा हैं।
तो इन गहरे विचारों का हमारे रोजमर्रा के जीवन में क्या मतलब है? क्या हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं?
मुझे लगता है बिल्कुल हाँ।
हाँ, सबसे पहली चीज तो यही है कि हम सजगता मतलब माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। अगली बार जब कोई अपनी बालकनी में खड़ा हो या कहीं इंतजार कर रहा हो, तो अपने आसपास के किसी छोटी सी चीज पर ध्यान दें। दीवार पर चलती चींटी, पत्तों का हिलना, किसी आवाज का पैटर्न, बस देखें बिना किसी जजमेंट के।
दूसरा, जटिलता को स्वीकार करना सीखें। जीवन में, रिश्तों में, दुनिया में चीजें अक्सर सीधी सादी नहीं होती।
सही कहा।
हर चीज के दो पहलू हो सकते हैं। इस किताब की तरह हमें भी आसान जवाबों से परे जाकर चीजों को उनकी पूरी जटिलता में देखने की कोशिश करनी चाहिए।
तीसरा, अपने आसपास ही आश्चर्य खोजें। हमें लगता है कि रोमांच या गहरे अनुभव के लिए कहीं दूर जाना पड़ेगा, पहाड़ों पर या विदेश में।
हाँ, अक्सर ऐसा लगता है।
लेकिन डिलार्ड दिखाती हैं कि आश्चर्य आपके घर के पीछे वाले पेड़ पर भी मिल सकता है, या सड़क किनारे उगे किसी जंगली फूल में भी। जरूरत है तो बस ध्यान से देखने की।
और चौथा, सवाल पूछने की आदत डालें। अपने जिज्ञासा को जिंदा रखें। ये क्यों है, ये कैसे काम करता है।
हाँ, बच्चों की तरह हैरान होना सीखें।
बिल्कुल, शायद दुनिया के रहस्यों पर अचरज करना ही अपने आप में एक आध्यात्मिक अनुभव है।
मेरे लिए इस किताब से सबसे बड़ा सबक ये है कि जीवन का अनुभव इस बात पर निर्भर करता है कि हम उस पर कितना ध्यान देते हैं। हमारी चेतना की गुणवत्ता ही हमारे अनुभव की गुणवत्ता तय करती है, और विस्मय या आश्चर्य कोई बचकानी चीज नहीं है।
नहीं,
बल्कि दुनिया को गहराई से समझने का एक जरूरी औजाल है।
और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये किताब विज्ञान और अध्यात्म को अलग अलग नहीं देखती। डिलार्ड दिखाती हैं कि कैसे भौतिक दुनिया का गहन अवलोकन हमें गहरे आध्यात्मिक सवालों और अनुभवों तक ले जा सकता है। ये तर्क और आस्था को दुश्मन नहीं, साथी बनाती है, और ये हमें जीवन की सुंदरता और कुरूपता दोनों को स्वीकार करने का साहस देती है। ये सिर्फ प्रकृति पर किताब नहीं है, ये जीने और देखने की कला पर एक शक्तिशाली चिंतन है।
तो इस चर्चा के बाद एक सवाल मन में उठता है, क्या हम सचमुच अपने आसपास की दुनिया को देख रहे हैं या सिर्फ भागते हुए नजर डाल रहे हैं? अगली बार जब मौका मिले तो रुककर ध्यान से देखने की कोशिश करें। क्या पता किसी की अपनी टिंकर क्रीक में उसे कौन सा रहस्य मिल जाए।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।